नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पश्चिमी एशिया संघर्ष के बावजूद देश भर में एलपीजी सहित पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति। प्रमुख तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जनगणना 2027 को नए युग की शुरुआत बताया। नागरिकों से पोर्टल पर पंजीकरण पूरा करने का आग्रह किया। नौसेना ने अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस तारागिरी को आज अपने बेड़े में शामिल किया। और प्रदेश में मौसम ने आज फिर रंग बदला। पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कई जगह आंधी बारिश। जयपुर और श्रीगंगानगर सहित कई जगह ओले गिरे। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिमी एशिया संघर्ष के चलते वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर प्रभाव के बावजूद भारत में एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति बनी हुई है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है और रोजाना लगभग 28 लाख एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई की जा रही है। इंडियन ऑयल ने ग्राहकों को एलपीजी रिफिल बुक करने के लिए एसएमएस और आईवीआरएस जैसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कंपनी ने कहा है कि कालाबाजारी और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए एलपीजी वितरकों के अचानक निरीक्षण करने के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं। इस बीच प्रदेश में तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशक मनोज गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि राज्य में घरेलू गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल जैसे उत्पाद भी मांग के अनुरूप मुहैया कराए जा रहे हैं।
बिल्कुल नॉर्मल स्थिति है। डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाईज में, अपनी इंडियन सप्लाईज में जो घर के अंदर एलपीजी होती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास हर प्रोडक्ट का, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, इवन एटीएफ है और एलपीजी तो है ही है, हमारे पास सबके पास पर्याप्त स्टॉक्स है। और बाकायदा इसका रेगुलर बेसिस के ऊपर हमारे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से हमारे सीनियर ऑफिशियल्स भी रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। हम पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि बिल्कुल सप्लाईज, एडिक्वेट सप्लाई हमारे पास, हमारी स्टेट में हमारी लोकेशंस पर अवेलेबल है।
भारतीय फार्मास्यूटिकल निर्यात संवर्धन परिषद फार्मेक्सिल के अध्यक्ष नमित जोशी ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सीमा शुल्क में छूट देने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। श्री जोशी ने कहा कि घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार का ये कदम महत्वपूर्ण है। इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन ने भी ईंधन की कीमतों को स्थिर बनाए रखने और नागरिकों को मूल दरों पर ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की सराहना की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि जनगणना 2027 एक नए युग की शुरुआत है और इससे प्रत्येक नागरिक को अपने परिवार का विवरण व्यक्तिगत रूप से दर्ज करने का अधिकार और सुविधा मिल रही है। आज स्वगणना पंजीकरण के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पहली बार जनगणना की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जा रही है, जो इस प्रक्रिया को अत्यंत सुरक्षित, सटीक और सुविधाजनक बनाता है। श्री बिरला ने नागरिकों से आधिकारिक पोर्टल पर अपने संबंधित क्षेत्र का चयन करके पंजीकरण पूरा करने का आग्रह किया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में राज्य कार्यकारी समिति की बैठक लेकर राज्य में आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। उन्होंने आपदाओं से आमजन को सुरक्षित रखने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने, शहरी जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान निकालने और प्रभावितों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें और ड्रेनेज, प्रोटेक्शन वॉल तथा अन्य संरचनात्मक कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराएं, जिससे स्थानीय स्तर पर जोखिम कम हो सके। जयपुर सहित प्रमुख शहरों में शहरी बाढ़ प्रबंधन कार्यों को प्राथमिकता देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि जल भराव और ड्रेनेज से जुड़ी समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा मुख्य सचिव ने आज ही राजधानी जयपुर के RUHS अस्पताल का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ रिम्स के विकास पर चर्चा कर बजट घोषणा के अनुरूप तेजी से काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव ने अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों से स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। नौसेना ने आज विशाखापत्तनम में नौसेना डॉकयार्ड में अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत INS तारागिरी को अपने बेड़े में शामिल किया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A श्रेणी का चौथा पोत है। 6,500 टन से अधिक वजनी तारागिरी युद्धपोत उन्नत स्टील्थ सुविधाओं और आधुनिक हथियार प्रणालियों से सुसज्जित है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के लक्ष्य के लिए समुद्री शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना ने तनाव के समय में वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा की है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर, फारस की खाड़ी और मलक्का जलडमरू मध्य सहित प्रमुख क्षेत्रों में लगातार अपनी उपस्थिति बनाए हुए है।
हमारी नेवी भारत के वैल्यू और कमिटमेंट का मैं मानता हूं ये सिंबल है, उसका ये प्रतीक है। INS तारागिरी की कमीशनिंग हमारी नेवी की ताकत में, वैल्यूज में तथा कमिटमेंट में और वृद्धि होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारी नौसेना ने यह सिद्ध किया है कि वह न केवल भारत के हितों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दुनिया भर में अपने नागरिकों और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठा सकती है।
डीग के नवनियुक्त जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने आज जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य केंद्र का दौरा कर लैब टेस्टिंग तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने लैब टेस्टिंग को 2 शिफ्ट में करने के निर्देश दिए, जिससे मरीजों को रिपोर्ट जल्द मिल सके। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए मौसमी बीमारियों और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं के लिए दवाओं का पर्याप्त भंडार रखने को कहा। इस बीच जिले के खेड़ली गांव में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने आज जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया। इसे मिलाकर जिले में अब तक 4 जनता क्लिनिक खुल चुके हैं। इस क्लिनिक के खुलने से खेड़ली तथा ब्रजनगर क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेंगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बने परिसंचरण तंत्र से आज भी प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी जिलों में आंधी बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन के साथ तेज आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है। इस दौरान कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां दिन भर रूक रूक कर हल्की बारिश का दौर चला। जिले में कई जगह ओले भी गिरे।
सूरतगढ़ क्षेत्र में मौसम ने अचानक पलटा खाया। दोपहर करीब 4 बजे के बाद सूरतगढ़ के ठेठार और अर्जुनसर क्षेत्र में भीषण ओलावृष्टि रही। जहां जहां ओलावृष्टि हुई वहां धरती पर कुछ समय के लिए सफेद चादर नजर आने लगी। ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात के चलते गेहूं और जौ की फसल को नुकसान पहुंचा है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर।
चूरू में सुबह से बादल छाए रहे और बूंदाबांदी का दौर चलता रहा। राजधानी जयपुर सहित पूर्वी जिलों में दोपहर बाद मौसम ने फिर पलटा खाया और शाम को कई इलाकों में आंधी के साथ तेज बरसात हुई। जिले में कई स्थानों पर ओलावृष्टि के भी समाचार हैं। इस बीच मौसम केंद्र जयपुर ने कल भी उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों में तेज आंधी बारिश तथा कहीं कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। विभाग ने किसानों को खुले में रखी तैयार फसलों को भीगने से बचाने के लिए आवश्यक इंतजाम करने की सलाह दी है। मानवता की रक्षा और जन कल्याण के लिए ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने की याद में आज देश दुनिया में गुड फ्राइडे परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। जयपुर सहित प्रदेश भर के गिरिजाघरों में प्रार्थना सभाएं रखी गईं और प्रभु यीशु की शिक्षाओं को पढ़कर सुनाया गया। चूरू जिला मुख्यालय पर ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु के 7 वचनों को याद किया और राष्ट्र विकास के लिए भाईचारा बढ़ाने का प्रण लिया। पाली शहर स्थित सेंट पॉल और इमानुएल सहित सभी प्रमुख गिरिजाघरों में बाइबल का विशेष पाठ हुआ और ईसा मसीह के संदेश को आत्मसात किया गया। कोटा में सुबह से गिरिजाघरों में आज बिना घंटियों के प्रार्थना सभाएं हुई और यीशु के बलिदान को याद किया गया। अजमेर से हमारी संवाददाता ने बताया कि वहां सुबह से ही गिरिजाघरों में ईसाई समुदाय के लोग प्रार्थना सभाओं में पहुंच रहे हैं।
इस मौके पर शहर के इमैक्युलेट कंसेप्शनल चर्च, रॉबर्टसन मेमोरियल चर्च सहित कई चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया, जहां उनके अनुयायियों द्वारा प्रभु यीशु के त्याग, मानवता के प्रति प्रेम भाव को याद किया गया और कई स्थानों पर क्रॉस यात्राएं भी निकाली गई। फादर आशीष जॉर्ज ने बताया कि आज के दिन ईसाई समाज के लोग उपवास रखते हैं और सादगीपूर्ण जीवन अपनाकर आत्मचिंतन करते हैं। गुड फ्राइडे के बाद ईसाई समुदाय द्वारा ईस्टर्न संडे के रूप में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व भी मनाया जाएगा। नलमादा दीज आकाशवाणी समाचार अजमेर।
हनुमानगढ़ जिले के भादरा में गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के तहत विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। ब्लॉक के 99 सरकारी स्कूलों में 40 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से खेल सुविधाओं का विकास किया गया है। विद्यालयों में विज्ञान विषय के लिए आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 में किए गए सुधार कानूनों को सरल बनाने तथा वित्त और प्रशासनिक दबाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य आम लोगों को नियंत्रित करना नहीं बल्कि उन्हें लाभ पहुंचाना और जीवन तथा व्यापार में सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिमी एशिया संघर्ष के बावजूद देश भर में एलपीजी सहित पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति। प्रमुख तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जनगणना 2027 को नए युग की शुरुआत बताया। नागरिकों से पोर्टल पर पंजीकरण पूरा करने का आग्रह किया। नौसेना ने अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस तारागिरी को आज अपने बेड़े में शामिल किया। और प्रदेश में मौसम ने आज फिर रंग बदला। पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कई जगह आंधी बारिश। जयपुर और श्रीगंगानगर सहित कई जगह ओले गिरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।